Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav and with me is my co-anchor, Sonu Sood.
Dhanyavad Vaibhav. Namaskar, Shrotao. Market Mantra mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hum desh aur duniya se aarthik, vyaparik aur share bazaar ke taza samachar aap tak layenge aur un par charcha karenge. Hamare saath khabron par charcha ke liye studio mein aamantrit hai varishth aarthik visheshagya Deep Shikhas. सिकरवार दीप शिखा जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
धन्यवाद सोनू जी.
और अब हेडलाइंस के साथ है वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव.
एब्सोल्युटली सोनू, फर्स्ट द हेडलाइंस. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सेज इंडिया स्किल वर्कफोर्स विल बी वैल्युएबल एसेट इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ स्लोवाकिया. डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट रिमेन क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ महावीर जयंती. ग्लोबल मार्केट सर्ज आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसेस 90 डे पॉज ऑन टैरिफ्स. एंड इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स क्रॉस रिकॉर्ड 820 बिलियन यूएस डॉलर्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का कुशल कार्यबल स्लोवाकिया की आर्थिक प्रगति के लिए बहुमूल्य होगा. महावीर जयंती के अवसर पर घरेलू शेयर बाजार बंद रहे. अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुल्कों पर 90 दिन के लिए रोक लगाने के बाद वैश्विक बाजारों में आई तीव्र बढ़त. और भारत का वस्तु और सेवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में 820 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया.
Starting with the stories that we have today, President Draupadi Murmu, currently on an official visit to Slovakia, inaugurated the Slovak-India Business Forum in Bratislava today. The event was also attended by Slovak President Peter Pellegrini and Slovak Foreign Minister Juraj Blanár. President Murmu highlighted the forum as a key opportunity to build partnerships and turn business prospects into real collaborations. The President also emphasized India is the fastest growing economy, aiming to become the third largest globally and a $5 trillion US dollar economy in the near future. Highlighting Slovakia's industrial strength and strategic position, President Murmu noted that Slovakia offers India ample opportunities for growth and collaboration. The president said India's skilled workforce will be a valuable asset to Slovakia's economy. Slovak President Pellegrini noted that despite the distance, India and Slovakia's relations are strengthening. He emphasized that combining Slovakia's engineering expertise with India's IT and AI advancements could lead to great success, with the forum turning opportunities into lasting results.
क्या कहेंगे आप दीप शिखा जी, जो स्लोवाकिया की विजिट है प्रेसिडेंट की, वो कितनी महत्वपूर्ण है अगर हम पूरे परिपेक्ष में देखें कि जहां बायलैटरल जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनको हर एक कंट्री के साथ बढ़ावा देने के लिए बहुत बल दिया जा रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने भी कहा कि अभी जो बायलैटरल रिलेशंस हैं करंट इकोनॉमिक एनवायरमेंट, ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरमेंट में बायलैटरल रिलेशंस का बहुत महत्व है. तो कैसे देखती हैं पूरी स्थिति को?
बिल्कुल देखिए, भारत जो है खासतौर से इस समय जो विश्व की स्थिति है, बायलैटरल द्विपक्षीय जो संबंध हैं उन पे बहुत बल दिया जा रहा है. और ये बल इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस समय भारत जो है अपना एक्सपोर्ट, निर्यात का जो बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है. उसके अलावा जो ये देश हैं उनके साथ आपका यूनाइटेड नेशंस में भी अगर आपके संबंध सुदृढ़ रहेंगे तो जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर भारत को बहुत सारे देश सपोर्ट करते हैं, इस ये जो विजिट है इस तरह से इन संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में जो है इसमें बहुत हेल्प करता है. तो ये इस विजिट को उसी नजरिए से देखा जाएगा कि द्विपक्षीय संबंध जो हैं उनको और मजबूती, और जो जिस तरह की बात हो रही है भारत का टेक क्षेत्र जो है और भारत का स्लोवाकिया का जैसे इंजीनियरिंग क्षेत्र है, तो दोनों देशों के लिए इसमें कुछ ना कुछ है इस विजिट के जरिए।
सो क्या कहेंगी आप, अभी जो मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर है, ट्रेड ऑर्डर है, उसमें जिस तरह का एक कहें कि डिसरप्शन आया है, जो विश्व की सबसे बड़े देश है उनके द्वारा कई जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको डिसरिगार्ड करने की वजह से कईयों से वो विड्रॉ भी हुए हैं। सो आपको लगता है कि ये जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है या जो चेंज हो रही है, जो कह रहे हैं कि शिफ्ट होगा ग्लोबल सप्लाई चेन्स में, उसमें भारत के लिए क्या संभावना आ सकती हैं, क्या चुनौतियां, क्या अवसर?
देखिए, विश्व में इस समय जिस तरह के हालात हैं, बहुत सारे बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं। इन सारे बदलाव के साथ साथ जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इंस्टीट्यूशंस जिनके प्रति विश्व के देशों ने कमिट किया था, उनके जो रूल्स बनते हैं, उनके जो रेगुलेशंस बनते हैं, उसके लिए कमिट किया था, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो दुनिया भर का जो ट्रेड है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत किया जाता है। तो जब एक देश उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको नज़रअंदाज करके कुछ अपने लिए कुछ कर देता है, अपना एक निर्णय ले लेता है और उसको नहीं मानता है, तो जाहिर सी बात है कि जो एक वर्ल्ड ऑर्डर जो एक बना हुआ था, वो ऑर्डर जो है उसको नुकसान तो पहुंचता है, क्योंकि अब हर देश जो है बायलैटरली उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जो एक सबके साथ सबके लिए जो रूल्स बने थे, अगर उनको कोई नहीं मान रहा है और आपको सबके लिए रूल्स बनाने पड़ रहे हैं, तो सारे देशों के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि आपको हर देश के साथ अलग अलग तरह से डील करना है। तो जो व्यवसाय जगत है, जो असल में ट्रेड कर रहा होता है, या जो निवेशक हैं जो किसी देश में निवेश करने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्थिति है, क्योंकि हर देश जो है अब द्विपक्षीय जो है संबंधों की तरफ देख रहा है, क्योंकि मल्टीलैटरल रूल्स जो हैं उनको एक बहुत बड़े देश ने नज़रअंदाज कर दिया है। तो ये हालांकि बहुत सारा विश्व का जो ट्रेड है अभी भी WTO के रूल्स के तहत ही किया जाता है, लेकिन फिर भी उसमें चूंकि आपके पास अपील का फोरम नहीं है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एक सेटबैक तो है इस मल्टीलैटरल सिस्टम के लिए। ये
Deepshika, as we all know, and we were just talking about the fact that there are complexities in the whole world which everyone has to navigate through. Now, as the Slovak president said, that it will be a great opportunity if Slovak's abilities can be combined with India's IT and AI. Do you believe that India can be seen as a reliable, a sustainable partner for the coming future, especially with respect to industries which are future-oriented like AI, IT, and being a great partner or a great support to the global supply chain?
Absolutely. And I think that is what India is trying to project itself. If you remember, we had a very successful G20 summit. And a lot of decisions, lot of developments took place during India's G20 presidency. And one of the key things which India showcased during its G20 was its developments in digitization, the digital public infrastructure that it has created and that it wants other countries also to look forward. And many countries have shown their interest. I think the world has seen, the strides that India has made in its tech sector. India's IT has been a huge strong point for India, India's services sector. So definitely going forward, India is also seen as someone which will play a huge role, not in terms of global supplies, but also as a global player on the high table. India is a huge market. India has a very strong voice in terms of geopolitics. And India is trying to navigate these geopolitical, geo-economic developments very carefully. India is also trying to build its supply chain, sustainable supply chains, which are strategic, trying to cut down on, dependence on any one supplier. So I think secure, sustainable supply chains and how we can participate in global value chains which are there globally, how can we be a reliable partner in that? So there are a lot of initiatives that have sort of been in the works. And I think in the near future, number of sectors, India can emerge as a global player. In terms of economics, of course, we remain a fastest growing country. So all these factors definitely make India stand out.
आइए देखते हैं कि बाजारों में कैसा प्रदर्शन रहा. महावीर जयंती के अवसर पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कारोबार के लिए बंद रहे. इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव, सिक्योरिटीज लेंडिंग और बोरोइंग और करेंसी डेरिवेटिव श्रेणियों में भी कारोबार आज बंद था. बढ़ते व्यापार संबंधित तनावों के बीच वैश्विक बाजारों में गिरावट के अनुरूप कल प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक 0.5% से अधिक की गिरावट पर बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 380 अंक कम होकर 73,847 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 137 अंकों की गिरावट से 22,399 पर बंद हुआ. बंबई शेयर बाजार में विस्तारित बाजार सूचकांक भी गिरावट के साथ बंद हुए. घरेलू परिवेश की बात करें तो उम्मीदों के अनुरूप आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में की गई कटौती बाजार धारणा को ऊपर उठाने में विफल रही. क्या कहेंगे आप, जो आरबीआई की पॉलिसी आई और उन्होंने 0.25% की और कटौती की है. फरवरी में उन्होंने शुरू किया था एक रेट कट का जो साइकिल 5 ईयर्स के बाद, और दोबारा से उन्होंने फिर से कटौती की, लेकिन शायद बाजार उसको पहले ही फैक्टर इन कर चुका था. क्या लगता है आपको, बाजार में ओवर द कमिंग वीक्स, कल शायद गिरावट थी क्योंकि इंटरनेशनल फैक्टर्स भी थे, लेकिन ओवर द कमिंग वीक्स सेक्टर वाइज कौन से सेक्टर्स हैं जिनको बल मिल सकता है रेट कट्स कम होने से?
देखिए, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी रिजर्व बैंक की पॉलिसी को लेके, ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद 50 बीपीएस जो है वो शायद कट करेगा, और ख़ास तौर से जो अनिश्चितता बनी हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको लेकर के खास तौर पर, बट ऐसा नहीं हुआ. तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा बाजार में जो एक्सपेक्टेशन एक बिल्ड हो रहा था वो नहीं हुआ. आगे अगर आप देखें तो जो क्षेत्र हैं जहाँ पर अगर सारा विश्व के बाजारों को देखें तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, कुछ असर हमारी अर्थव्यवस्था पर आएगा. जो ये बदलाव चल रहे हैं अमेरिका में और उसके तहत जो एक टैरिफ वॉर जो चल रहा है चीन और अमेरिका का, तो हालांकि ये टैरिफ्स को 90 दिन के लिए पॉज किया गया है, लेकिन आगे भारत और अमेरिका के बीच क्या एग्रीमेंट होता है, जो एक ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है, उससे हमें कितना फायदा हो सकता है, किन क्षेत्रों को फायदा हो सकता है, ऐसे और जो बहुत सारे क्षेत्र हैं जैसे चीन के ऊपर बहुत बड़ा टैरिफ लग गया है, तो ऐसी संभावना, ऐसा अंदेशा है कि बहुत भारत में बहुत सारा डंपिंग हो सकता है कुछ क्षेत्रों में, खास तौर से जहाँ पे चाइना बहुत कंपेटिटिव है. तो जो क्षेत्र जहाँ पे डंपिंग की बहुत संभावना है, जिनका ग्लोबल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जो साइक्लिकल नहीं है, उन क्षेत्रों पर फोकस करना आने वाले समय में वो थोड़ा ठीक रहेगा. तो जैसे फाइनेंशियल सेक्टर है, वहाँ पर थोड़ा वहाँ पे अपसाइड मिल सकता है. जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र है जो सरकार के बहुत फोकस में है, उन्होंने केपेक्स में काफ़ी अच्छा खासा बढ़ोतरी किया है, और सरकार का फोकस रहेगा कि जल्द से जल्द केपेक्स हो, क्या कि ग्रोथ को भी मजबूती थोड़ी सी मिल सके उससे. तो ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो क्षेत्र हैं उनकी कंपनीज में आगे वो रहेगा. जो अनसर्टनिटी जिन क्षेत्रों में रहेगी, जो खास तौर से जैसे मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जहाँ पे ग्लोबल एक्सपोजर है, जहाँ पे डंपिंग का अंदेशा हो सकता है, जहाँ पे थोड़ा सा टच पॉइंट है बाहर की अर्थव्यवस्थाओं को लेकर के, उन क्षेत्रों को आपको खास तौर से थोड़ा सा ध्यान से उनमें निवेश करना,
जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है
या जिनका एक्सपोजर है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं भी है, जहां डंपिंग का फियर है कि खासतौर से जैसे मेटल्स में एक्सपेक्टेड है कि डंपिंग हो सकती है, तो इन क्षेत्रों को थोड़ा ध्यान से निवेश करें. या मैन्युफैक्चरिंग भी है, कुछ क्षेत्रों में ऐसा उम्मीद है कि हो सकता है चीन से डंपिंग हो जाए।
लेकिन कॉमर्स मिनिस्टर ने काफी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो डंपिंग है उस पर बहुत कड़ी नजर रखी जाएगी और इंश्योर किया जाएगा कि ऐसा ना हो, सो उससे डेफिनेटली बल मिलेगा धारणा को।
बिल्कुल, देखिए कि जैसा कि मैंने कहा कि आगे वाले समय में इन क्षेत्रों में थोड़ा ध्यान से निवेश करना होगा, आप देखिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो ये पूरा एश्योरेंस जा रहा है निर्यातकों को या और जो भी हमारी लोकल जो इंडस्ट्री है उसको कि सरकार डंपिंग को हर तरह से रोकने की कोशिश करेगी, ये देखेगी कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन और सरकार ये भी कह रही है कि आप जो है थोड़ा क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लेकर के आइए और ऐसा नहीं है कि कोई डंप कर रहा है तो उसको आप इनकरेज करिए, लोकल सोर्सिंग बढ़ाइए, अपनी जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी तरफ देखिए। तो ये सारे प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, सरकार श्योर कर रही है, लेकिन यही चीजें आपको देखनी है कि आगे इन क्षेत्रों में इनके कंपनियों पे कितना असर हो रहा है, किस तरह के मेजर्स सरकार से लिए जा रहे हैं, किस तरह के मेजर्स बाकी अर्थव्यवस्थाएं ले रही हैं, उसका क्या असर आ रहा है इनके ऊपर।
और आरबीआई पर छोटी सी टिप्पणी आपकी, एक और मैं चाहूंगी, आपने कहा कि शायद कुछ लोगों को 50 बेसिस पॉइंट्स कट की आशा थी और 25 बेसिस पॉइंट्स कट हुआ है, लेकिन दो बार लगातार कट हुआ है एंड आगे भी कट होने की संभावना बताई जा रही है गवर्नर द्वारा। उन्होंने जो इन्फ्लेशन का टारगेट है उसे कम किया है, माफ कीजिएगा, उसे जी कम किया है और ग्रोथ के टारगेट को भी कम किया है। सो इन्फ्लेशन कम होने से उनको रूम मिलता है और ग्रोथ कम होने से उनको बढ़ावा देना है ग्रोथ को। सो और उन्होंने कहा कि जो स्टांस है वो भी एकोमोडेटिव हो गया। सो इसका मिला जुला क्या भविष्य के लिए, क्या उसके लिए संभावनाएं बनती हैं?
तो अगर आप देखें कि हालांकि कट जो है वो 25 बीपीएस किया है, लेकिन ऐसा जो इंडिकेशन है अगर आप देखें स्टांस जो है अकोमोडेटिव हो गया, तो ये है कि माहौल जो है, मतलब जो आरबीआई की तरफ से या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की तरफ से ये जो एक थ्रेट इन्फ्लेशन की रहती थी, महंगाई की रहती थी, वो उन्हें लग रहा है कि महंगाई दर जो है वो थोड़ा नियंत्रित रहेगी। और खास तौर से अगर आप देखिए कि जो जियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं, क्रूड जो है काफी गिर गया है, तो भारत चूंकि क्रूड आयात करता है, काफी हद तक उस पर निर्भर रहता है, उसका बहुत असर हमारी अर्थव्यवस्था पर आता है, इन्फ्लेशन पर आता है। तो क्रूड इतना गिर गया है, उसका फायदा हमारी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल मिलेगा। तो इन्फ्लेशन का जो एक जो फैक्टर था वो आरबीआई को डेफिनेटली दिख रहा है कि उसमें अंदेशा ज्यादा नहीं है बढ़त का, तो इसीलिए उन्होंने स्टांस अपना चेंज किया है। तो उम्मीद की जाती है कि अगर सारे फैक्टर्स ठीक रहते हैं, सप्लाई जो है, फूड एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है पिछले साल इन्फ्लेशन में, ये सब फैक्टर्स नियंत्रित रहते हैं, तो हो सकता है आरबीआई अगले पॉलिसी में भी शायद कुछ काटने का स्कोप रहे उनके लिए।
और आरबीआई गवर्नर और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं दोनों ने ही कहा है कि सरकार और आरबीआई दोनों को मिलकर जो है स्थिति को नियंत्रित रखना होगा, जैसे अभी मजबूत है वैसे ही बनी रहे। सो आपको लगता है कि सरकार की तरफ से सबसे बड़ा जो अभी आवश्यकता है और जिस पर कार्य किया जा रहा है वो जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, ताकि अभी 90 दिन का हमें जो मिला है समय, उसमें इस तरह की नेगोशिएशंस हों, इस तरह के मुकाम पर हम पहुंचे कि हमें मिनिमम उसका इम्पैक्ट हो?
बिल्कुल, सरकार की तरफ से यही कोशिश होगी कि ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट है इसको जल्द से जल्द जो है उसको हम कंक्लूड करें। लेकिन देखिए कि ये द्विपक्षीय एक ट्रेड डील होगा, तो दोनों पक्षों को ये ट्रेड डील करना होगा, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं,
आमतौर पर तो सालों लग जाते हैं,
कई बार सालों लग जाते हैं, तो इसलिए सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि खास तौर से क्योंकि हमारे लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार भी है हमारे निर्यातकों के लिए, तो हमारे लिए जितना भी फायदेमंद डील ला सकें वो उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन सरकार की तरफ से बाकी भी जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से जो स्पेंडिंग है, केपेक्स स्पेंडिंग है, उसको बढ़ाया जा रहा है ताकि ग्रोथ को और बल दिया जा सके। हिंदुस्तान भारत जो है एक भारत की अर्थव्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं है, एक्सपोर्ट क्षेत्र में बहुत निर्भर नहीं है, हमारा लोकल मार्केट बहुत, हम लोकली बहुत स्ट्रांग हैं, तो इस तरह के जो मेजर्स हैं, केपेक्स एक्सपेंडिचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्चा होता है, इस सब से हमारी ग्रोथ को काफी बल मिलेगा, हमारी इंटरनल इकोनॉमी को बहुत बल मिलेगा।
आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या प्रदर्शन रहा। प्रमुख एशियाई बाजारों में दो वर्षों से अधिक का सबसे बड़ा उछाल आया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने व्यापक जवाबी शुल्कों में से अधिकांश पर फिलहाल रोक लगा देने के बाद बाजारों में फिर तेजी लौट आई। जापान का निकेई अगस्त के बाद अपनी सबसे अधिक बढ़त दर्ज करते हुए 9.1% से अधिक के उछाल पर बंद हुआ। बेयर मार्केट के क्षेत्र में पहुंचने के एक ही दिन बाद 5 वर्षों की अपनी सबसे तेज दर्ज करते हुए दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 6.6% की बढ़त पर बंद हुआ। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 5.4% से अधिक के उछाल में रहा। हांगकांग के हैंगसेंग में 2% से अधिक की तेजी आई और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.1% से अधिक की बढ़त में रहा। बावजूद इसके कि अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के आयात पर शुल्क बढ़ाकर 125% कर दिया है। आज चीन ने चेतावनी दी कि अमरीकी शुल्क पूरे विश्व के हित के खिलाफ है और वॉशिंगटन से कहा कि विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध की स्थिति में वे मध्य रास्ता अपनाएं। इस बीच प्रमुख यूरोपीय बाजारों में भी बढ़त का रुख था। दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 5.7% से अधिक, फ्रांस का कैक 5.6% से अधिक और लंदन का फुटसी 4.5% से अधिक के उछाल में थे। आपकी एक ब्रीफ सी टिप्पणी, चीन और अमेरिका के बीच जो ये एक टिट फॉर टैट चल रही है, अब इतने बड़े फिगर्स तक हम पहुंच गए हैं, 125%। इनफैक्ट जो चाइनीज ऑटोज हैं उन पर तो 181% टैरिफ लगता है यूएस में। सो क्या लगता है आपको, ये पूरी जो स्थिति है ये बेसिकली इन दो देशों के बीच की है और बाकी सब का एक कोलैटरल सिचुएशन में फंसे हैं?
मुझे लगता है कि अमेरिका की एक बहुत, उन्होंने अपने देश के हिसाब से बहुत एक स्ट्रैटेजी तरीके से वो चले हैं। सारे विश्व में बहुत सारे देश जहाँ से वो आयात करते हैं उन सबको उन्होंने एक डेडलाइन दे दी, उनके ऊपर ये प्रेशर बना दिया है कि वो अपने जो आयात शुल्क हैं उसको काटें या फिर ट्रेड डील करें अमेरिका के साथ। तो उनको, सारे देशों को वो एक, उन्होंने प्रेशर बना के उनको वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आना उनके लिए ज़रूरी कर दिया है। चीन के साथ जो ये चल रहा है, दोनों देशों के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा है, ये कितना लंबा खींचेगा अभी तो कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर रोज़ एक वो नया टर्न ले रहा है डेवलपमेंट। लेकिन जैसे कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ उनके जो है बातचीत की जा सकती है, वो मतलब उनके संबंध रहे हैं, वो मिले हैं प्रेसिडेंट जी के साथ, तो इस तरह ऐसा अंदेशा है कि शायद दोनों जो हैं वो भी नेगोशिएटिंग टेबल तक
सॉफ्टनिंग हो रही
है। मैं नहीं कहूंगी कि सॉफ्टनिंग हो रही है, लेकिन दोनों तरफ से जिस तरह की बातचीत हो रही है, हो सकता है कि कुछ आने वाले दिनों में शायद कुछ बन जाए दोनों के बीच में बातचीत।
And talking about the US markets, US stocks registered their biggest one-day gains in years on Wednesday after President Donald Trump declared a temporary pause on tariffs providing relief to the markets that were reeling under pressure due to escalating trade tensions. The Nasdaq Composite shot up over 12%, marking its second best day ever and the greatest gain since January 2001. S&P 500 jumped by over 9.5% and Dow Jones Industrial Average rallied more than 7.8%. Deepshika, what do you feel that all these uncertainties that are coming every now and then, and as you said that it's nowhere clear that how the picture will reveal itself in a few days from now, can India ride this wave of uncertainty? And again, my question would be to project itself as a reliable partner for the future. And as we were talking earlier about the dumping part, leaving that aside because India does not indulge in such activities, would you think that India can create a space for itself in the markets irrespective of what the tariff war brings forth as a solution, that, you know, India could be a partner who could go ahead with the manufacturing sector or any other sector and make a wider space for itself than it already exists?
Definitely, I think from the government side there would be attempts to shield the Indian economy as far as possible from the global upheaval. But you know, we live in a globalized world. Our markets, our financial markets are quite integrated. But Indian economy per se, if you look at it, is still it is still not so exposed in terms of its exports. We are not so dependent, our industry is not so dependent on external economy. So while a robust external economy would have aided India's growth, but an unhelpful economy, global economy, would have some impact, but partial impact. And I think government's effort would be to sort of ring-fence our economy as far as possible, and which is why there's going to be focus on infra creation, investment, domestic growth, you know, measures which can prop local growth, and also see where our export sector can make a dent in terms of, you know, supply chains, and also if we can, you know, take some part of the overseas markets for our exports.
In fact, exports की आप बात कर रहे हैं तो वैश्विक बाजारों में आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का वस्तु और सेवा निर्यात वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 820 अरब अमरीकी डॉलर को पार कर गया है. वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में ये आंकड़ा 778 अरब डॉलर था और ये लगभग 6% की वृद्धि है. उभरते व्यापार परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग निकायों के साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा आयोजित बैठक में ये आंकड़े सामने आए. श्री गोयल ने मजबूती और अथक प्रयासों के लिए निर्यातकों की तारीफ करते हुए उनसे आग्रह किया कि वे घबराएं नहीं और मौजूदा स्थिति में भी सिल्वर लाइनिंग्स पर ध्यान दें.
एंड टॉकिंग अबाउट ऑयल, ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन टुडे अमिड कंसर्न्स रिगार्डिंग डीपनिंग ऑफ US and China trade tensions. Brent crude was trading over 2.6% down at $63.73 per barrel. WTI crude was also trading over 2.7% down at $60.64 per barrel when reports last came in. Meanwhile, Energy Information Administration data showed US commercial crude oil inventories increased by 2.6 million barrels to 442.3 million barrels in the week ending on April the 4th.
उधर सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 1.78% बढ़कर 91,430 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं चांदी 0.24% गिरकर 91,720 रुपए प्रति किलो पर थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 1.68% बढ़कर 91,311 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं मई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 0.26% बढ़कर 91,382 रुपए प्रति किलो पर थी. अभी जो स्थिति है उसका कमोडिटीज पर क्या असर पड़ेगा, खासकर ऑयल पर?
ऑयल पर देखिए, जब यूएस में सरकार बदली थी तो एक बहुत बड़ा स्टांस चेंज हुआ था और यूएस की नई सरकार का फोकस था ड्रिलिंग के ऊपर, ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर. तो उसका असर पड़ा था ऑयल के ऊपर. और लेकिन अब जिस तरह के हालात आ रहे हैं, अगर स्लो डाउन होता यूएस इकॉनमी में तो जाहिर सी बात है कि क्रूड ऑयल जो है वो थोड़ा टेम्पर्ड रहेगा, उसके दाम जो है हमारे लिए बहुत फायदे की बात है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए.
और सोने के दामों में तेजी की उम्मीद है?
सोने के दामों में यूएस का असर आपने देखा था, क्योंकि वहां पे बॉन्ड यील्ड्स जो है बहुत बढ़ गए थे और उसके बाद हमने सोने में गिरावट देखी. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा सोने के मूवमेंट को तय करने के लिए. अगर फाइनेंशियल मार्केट, खासतौर से बॉन्ड मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है तो सोना जो है ऐसा लगता है कि इस अनिश्चितता के चलते थोड़ा मजबूत ही रहेगा.
समय समाप्त हो रहा है. सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीप शिखा जी आने के लिए और बहुमूल्य जानकारी के लिए.
And before we close, a reminder of the headlines. President Draupadi Murmu says India's skilled workforce will be a valuable asset in economic progress of Slovakia. Domestic stock markets remain closed on account of Mahavir Jayanti. Global markets surge after US President Donald Trump announces 90-day pause on tariffs. And India's goods and services exports cross record $820 billion in financial year 2024-25. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, Namaskar.
भाग भद्रा।